यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा,
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया,
विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति
जगत का ये नाटक रहा न अधूरा,
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए,
यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे मध्य एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन को केवल चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सेवा, संवेदना और आध्यात्मिकता का जीवंत उदाहरण बनकर दिखाया है। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी एक ऐसा नाम जो हजारों लोगों के लिए आशा, विश्वास और नई जीवन शक्ति का प्रतीक बन चुका है। आपने चिकित्सा विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त कर मानव सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। केवल शरीर को स्वस्थ करना ही आपका उद्देश्य नहीं रहा, आपने आत्माओं को तनाव, भय और निराशा से मुक्त कर उन्हें भीतर की शांति और परमात्म शक्ति से जोड़ने का महान कार्य भी किया। ब्रह्मा कुमारीज के ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर के रूप में आपने अनगिनत लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाई है। आपका जीवन हमें ये अनुभव कराता है कि जब विज्ञान और आध्यात्म साथ साथ चलते हैं, तब सेवा केवल इलाज नहीं रहती, वह ईश्वर प्राप्ति का स्पर्श बन जाती है। वह ईश्वर का स्पर्श बन जाती है। आपकी सरलता, विनम्रता और करुणा हर मिलने वाले के हृदय को छू जाती है। आपके शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की तपस्या और आत्मिक प्रेम की अनुभूति समाई हुई है। तो ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को अपने बीच पाकर हम बड़े हर्षित हैं। एक हाथ की ताली से हम भाई जी का स्वागत करते हैं और एक बहुत सुंदर विषय लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, रिटर्न जर्नी। शांति।
ओम शांति। चलिए एक मिनट के लिए हम सभी इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। चलिए एक मिनट के लिए बाबा के पास चले जाते हैं, पावर हाउस के पास। ओम शांति। जैसे नाम ही है रिटर्न जर्नी, हम आत्माएं जब परमधाम से घर यहां आई थी दुनिया में, कैसे आई थी? सत्युग में कैसी स्थिति थी? संपूर्ण पावन सतो प्रधान आए थे परमधाम में, बाबा के पास थे, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति थी। और फिर सत्युग में आए तो कैसे थे? संपूर्ण पावन सतो प्रधान अशरीर ही आए थे, आके शरीर मिला, पवित्र शरीर मिला, आत्मा ही पवित्र थी। 8 जन्म हमने सत्युग में बिताए, 12 जन्म कहां बिताए? त्रेता में, 1 जन्म संगम का, राइट? तो 21 जन्म हो गए। और उसके बाद हमने कितने जन्म, 21 जन्म कहां बिताए? द्वापर में, और 42 जन्म कलयुग में। अभी 84वां जन्म है, पाठ पूरा हुआ, चक्र घूम रहा है, अभी वापिस कहाँ जाना है? घर जाना है। पर जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा नहीं? एकदम पावन सतो प्रधान आए थे, अशरीरी आए थे, और कैसे जाना पड़ेगा वापस? वापस संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनना पड़ेगा। अशरीरी बन के ही जा सकते हैं, देह साथ में जाएगी, माता पिता भाई बहन जाएंगे, सेंटर वाले भाई बहन साथ जाएंगे नहीं? तो 100 रुपया साथ में जाएगा, 100 रुपये का नोट ले जाएंगे साथ में, कुछ भी साथ नहीं जाएगा ना। खाली हाथ जाए आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा, राइट? है ना। रिटर्न का मतलब ये, रिटर्न मतलब अपने आप को टर्न कर देना। कैसा टर्न कर देना? अभी तो हम 84 जन्म में पाप पूरे कर लिए, अभी 84 जन्म पूरे होने के बाद बाबा मिला हमको, इस जन्म में दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ हमारा। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। और ब्राह्मण जन्म देते ही हमारा दिव्य, ये हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, राइट? है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमको जैसे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा की पधरामणी ब्रह्मा बाबा के तन में हुई, तो बाबा ने एकदम अपने आप को टर्न कर लिया। कैसे कैसे कर लिया? टर्न माना पुराना जीवन पुराना रह गया, मर्जी वा जन्म नया जन्म। तब से बाबा सब कुछ भूल गए है ना, दुनिया दे और दे के दुनिया को भूल गए, अपने युगल अपने बच्चे सबको ही सब कुछ समर्पण कर दिया ना बाबा ने, किया था ना किया था। तो बाबा ने टर्न कर लिया अपने आप को, शिव बाबा को दे दिया, समर्पण कर दिया। हमें भी क्या करना है, अपने आप को टर्न कर देना है, राइट। हम कैसे थे पहले, तमो प्रधान थे, आज के मूल्य में भी था ना, एकदम दुखी गंगाल हो गए थे, अशांत हो गए थे, दुखी परेशान हो गए थे, और फिर हमने ऐसे ही बाबा मिला, दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। अपने आप को टर्न कर लेना है, ठीक है, कैसे, जैसे ब्रह्मा बाबा के समान कर लेना है। दूसरा रिटर्न जर्नी, वापस घर जाना है ना। 84 जन्म नीचे उतरे वापस, कितने देर में जाना है, कितने दिन में जाना है, एक सेकंड में जाना, पर एक सेकंड में हमारी स्थिति ऐसी बन सकती है, क्योंकि आखिरी समय का पता है हमको कभी भी। अभी तो संडे की मुरली थी ना, संडे की चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो बाबा ने कहा, हम कहते विनाश की सोचते हैं, विनाश कब होगा, शायद अभी 2 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद होगा, 2036 में होगा, पर अपना पता है हमको, किसी को भी पता है क्या कब क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है। हम तो रोज देखते हैं ना, अचानक से हार्ट अटैक होता है, 30, 35, 32 साल, 35 साल वाले को भी हार्ट अटैक होता है, मर जाता है, हॉस्पिटल में डेड बॉडी लेके आते हैं। उसने प्लानिंग की हुई थी, शाम की ट्रेन कहीं जाना था, फ्लाइट थी कहीं जाने की, उसके पहले हार्ट अटैक आ गया। तो पता है किसी को, उम्र का पता है अभी, उम्र का भी नहीं पता कब जाना, बच्चे भी जा सकते हैं ना, जवान भी जा सकते हैं, बूढ़े भी जा सकते, किसी भी। मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट है ना, तो कैसे करना है आपको, आप देखते हैं, एक बार देख लेते हैं हम कैसे नीचे उतरे है ना। जो देवी देवता होते हैं उनको सपने आते हैं कभी, देवी देवताओं को सपने आते हैं, फरिश्तों को सपने आते हैं, क्यों नहीं आते, क्योंकि इनका मन 100% कॉन्शियस होता है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति ना, मन बुद्धि संस्कार, जब आए थे तो हमारा मन भी सत्व प्रधान था, बुद्धि भी सत्व प्रधान थी, और संस्कार भी सत्व प्रधान। कौन संस्कार थे हमारे अंदर, सर्वगुण संपन्न के संस्कार थे, 36 गुणों में हम संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, माना हर गुण में हम 100% थे, 16 कला नहीं होती, नाचने की कला, खाना बनने ऐसी नहीं, 36 के 36 गुणों में हर गुण एक कला के माफिक था, 100% था, संपूर्ण निर्विकारी। 5 विकार तो नहीं थे इनके, अंश वंश भी नहीं थे, आलस्य भी नहीं था, अलबेलापन नहीं था, दोष दर्शन भी नहीं था, किसी का बदलने की भावना भी नहीं थी, फुल निश्चय विश्वास था, किसी पर शक अनुमान नहीं था, चिंता नहीं थी, भय नहीं था, जल्दबाजी जरा भी नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष, ये अंश है, ये अंश है, संस्कार है, आदतें भी नहीं थी हमारे अंदर, एकदम अलर्ट थे, एक्यूरेट थे, है ना, एकदम क्या क्या थे हम, गुण दर्शन करने वाले, सबके गुण देखने वाले थे, रहम दिल थे हम, कैसे थे, रहम दिल थे, और फिर हम निश्चय और विश्वास रखने वाले, निश्चय और विश्वास, बेफिक्रबाज, निश्चिंत थे और निर्भय थे, और कैसे थे हम, कैसे थे, धीरेता वाले थे और विश्व कल्याणकारी थे। तो हमारी स्थिति वैसी थी ना, अभी हम कैसे हो गए, तो हम संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 4 नियम 4 मर्यादाएं, हम ब्राह्मणों के 4 मर्यादा कौन सी है, पवित्रता, सत्संग, शुद्ध सात्विक भोजन और दैवी गुणों की धारणा, ये 4 हमारे परहेज कह सकते हो या मर्यादाएं कह सकते हो, और 4 नियम, पावरफुल अमृत वेला, मुरली और सारा दिन मुरली का मनन चिंतन, जो बाबा ने क्या कहा सारा दिन वो बातें दिल में घूमनी चाहिए, मन में बार बार उसका रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए, जैसे गाय जुगाली करती है ना खाना खाने के बाद सारा दिन, ऐसे हम बच्चों को सारा दिन मुरली के जो बाबा के जैसे आज के महाभाग के थे उनको बार बार हम रिवाइज और रियलाइज करें, सच्चे दिल से महसूस करें, बाबा ने मेरे लिए कहा, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, राइट, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए ना। और फिर सोने के पहले पोता मेल देना, वेंटिलेशन, ये हमारे 4, इनमें मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, परफेक्ट, कुछ भी हो हमारा अमृत वेला मिस ना हो, कुछ भी हो हमारी मुरली मिस ना हो, सारा दिन बाबा की मुरली की बातें, दुनिया की बातें नहीं, बाबा ने क्या कहा वो सोने के सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना, चार्ट भर के मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाना, राइट, बाबा के साथ सो जाना, बाबा की गोद में सो जाना, तो ये हमारे मर्यादा पुरुष अहिंसा परमो धर्म, काम विकार तो छोड़ा, साथ में कामनाओं को भी छोड़ा, इच्छाओं को भी छोड़ा, तो लाइट का ताज आ जाता है ना। और क्रोध लोम अहंकार और इनके बाल बच्चों को छोड़ दिया, अंशवंश को छोड़ा, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाता है। तो ऐसी हमारी स्थिति थी, तो जाते थे हमारी यही वाली स्थिति होनी चाहिए ना, नहीं तो ऐसी परफेक्ट स्थिति हमारी। तो हमें क्या करना, अब देखिए हम कैसे सत्युग, सत्युग में हम 8 जन्म लिए, हमने कोई पाप कर्म किया, अक्रम थे, प्रलब्ध भोग रहे थे, तो हमारा कोई भी, हमारी एनर्जी, हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं हुआ। पाप कर्म माना क्या, विकर्म माना क्या, विकारों के वश किए कर्म। तो हमने सत्युग में कोई अक्रम कहलाए और त्रेता में 12 जन्म अक्रम किए, फिर तो आत्मा की एनर्जी क्या हो गई थी, 50% हो गई। सत्युग में त्रेता में आते आते 75% हो गई, माना सातों एनर्जी 75% पहुंच गई, है ना। और त्रेता में क्या हुआ, हमारे अंदर क्या कमी आ गई, त्रेता में हमारे अंदर ज्ञान, तो ज्ञान के स्वरूप थे हम, ज्ञान हमारे संस्कारों में आ गया, पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सच्चा स्नेह भी था, किंतु सुख और आनंद कम हो गया था, राइट। सुख और आनंद 2 डिग्री कम हुई, 2 क्लास कम हुई ना, सुख और आनंद की डिग्री थोड़ी कम हो गई थी। जैसे त्रेता में सत्य की समझ, तो मैं आत्मा हूं ये तो है, पवित्रता भी है, शांति भी है और स्नेह भी है आपस में, किंतु क्या नहीं रहा, सुख की डिग्री थोड़ी कम, आनंद की डिग्री कम हो गई, राइट। शक्तियां तो थी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब त्रेता पूरा हुआ तो आत्मा की एनर्जी 50% से, जब तक आत्मा राजा थी सत्युग त्रेता में, आत्मा राजा थी, हम आत्मवानी थे, जैसे सत्युग, जैसे त्रेता का अंत शुरू हुआ तो आत्मा की एनर्जी 50% आ गई। मन प्रधानमंत्री था, तो मन क्या करता है, बाकी एनर्जी किसके पास गई, मन के पास, राइट। तो मन की भी 50, जब तक आत्मा सत्य त्रेता में थे 51%, 49%, फिर 50.1%, 49.9%, और जैसे ही 50% हुआ तो मन कैसा हो गया, मन भी 50%, राइट। और जैसे ही आत्मा की एनर्जी कैसे हुई, 49.9 और मन की एनर्जी 50.1, तो क्या मन राजा बन गया। होता है ना, शेयर मार्केट में होता है ना, कंपनी में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, जिसका शेयर ज्यादा होता है 50% ज्यादा, वो क्या बन जाता है, MD बन जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है ना। तो मन प्रधानमंत्री बन गया अभी, ठीक है। और आत्मा क्या हो गई, उसके वश में हो गई, आत्मा कब्र दाखिल हो गई। अब अपने को आत्मा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, मनुष्य, क्या बोलते थे, पहले देवी देवता कहते थे, अभी क्या बोलते, मनुष्य, माना मन के वश में, है ना। मन राजा बन गया ना अभी, अब है आत्मा, किंतु आत्मा कहते नहीं है, समझते नहीं है, राइट। अब अपने को आत्मा मानी स्थिति खत्म हो गई, अभी अपने को क्या समझते हैं, मनुष्य, जो मन का तो देह अभिमान आ गया, देहभान मिट्टी है, तो देह अभिमान बहुत गहरी मिट्टी है, राइट। देह अभिमान आने से क्या है, काम विकार आ गया, मेल फीमेल का भान आ गया, तो उससे काम विकार आया, कहां देह का आकर्षण हुआ, अकल या शक्ल पर आकर्षण गया, काम विकार आया, फिर क्रोध आया, ये पांचों विचार कहां, दल से पैदा हुए, कहां से पैदा हुए, देह अभिमान आया तो देह का क्या हुआ, पोजीशन का डर लगा, है ना, नाम का डर लगा, तो उस डर के कारण काम विकार आया, फिर क्रोध भी डर से आया, लोभ भी डर से आया, डर लगा ना, देह विमान आया, देह विमान से डर लगेगा, इनसिक्योरिटी फील होगी, तो डर लगा, तो फिर लोभ आया, इकट्ठा कर लिया, उसका भी हमारे पास आ जाए, नहीं, मोह भी डर से पैदा हुआ, ये जो बच्चे हैं, ये जो परिवार है, ये मेरे पास ही रहे, डर से, अहंकार भी डर से आया, तो 5 विकार आए, राइट। और 5 विकार जैसे आने लगे, इसके वश होके हमने कर्म किए, तो हमारे अंदर क्या होने लगा, आलस्य आने लगा, एनर्जी खत्म होती गई, विचार तेज चले, ज्ञान खत्म हो गया, पवित्रता खत्म होने लगी, शांति खत्म होती गई, विचार तेज चलने लगे, प्यार खत्म हो गया, सबको जो जो मेरी महिमा करता अच्छा लगता है, जो मेरी खराब महिमा नहीं करता, मेरा कहना नहीं मानता, वो खराब लगता है, उसे बोलते हैं सबके प्रति स्नेह नहीं, स्वार्थ का स्नेह हो गया, है ना। सुख खत्म हो गया, इच्छाएं बढ़ने लगी, सुख किसे कहते हैं, संतुष्टता से खुश सुख होता है ना, सुख खत्म हो गया, राइट, आनंद खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हम क्या हुए, ज्ञान, चीजों का ज्ञान, तीनों लोगों का, धरती का ज्ञान, आसमान का ज्ञान, वायु का ज्ञान सीखने लगे, राइट, साइंस का ज्ञान सीखने लगे, पवित्रता खत्म हो गई, तो क्या करने लगे, अभी तो कैसे शैम्पू यूज करते हैं, पहले और कुछ यूज करते थे ना, दही उबटन लगाते थे ना, शरीर की पवित्रता, शांति भी क्या, जंगल में शांति, प्रेम का देहधारियों में प्रेम, सुख का खाने पीने में सुख, पैसे में सुख, आनंद का दुनियावी चीजों में आनंद ढूंढने लगे, शक्ति कहां पर मलयुद्ध करके ना पहलवानी करके शक्ति देने लगे, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्तियां खत्म हो गई, राइट, समझ रहे। तो सातवें एनर्जी क्षेत्र रजो प्रधान हो गया, फिर तमो आ गया, तो कलयुग आया। तो पहले राजाओं को सिर्फ बीमारियां आती थी, इसे राजवैद्य होते थे, पब्लिक में वैद्य नहीं होते थे, राजवैद्य पहले राजा रानी में आई ना, धीरे धीरे फिर धीरे यथा राजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, पर प्रजा में भी बीमारियां आने लगी, तकलीफें बीमारियां आई, तकलीफें आई, फिर आलस आया, अलबेलापन आया, दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगे, क्लेश हो गया घरों में, सब जगह क्लेश होने लगा, अवगुण दिखाई दी पत्नी को पति में, पति को पत्नी में अवगुण दिखाई देने शुरू हो गए ना, बगले बन गए ना, पहले क्या थे हंस, फिर क्या बन गए बगले, है ना, सारे बगले बन गए, है ना, बच्चों को माँ बाप में, माँ बाप को बच्चों में अवगुण दिखाई देने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर बदलने की भावना हो गई, रहमदिल खत्म हो गया, बदलने की भावना, निश्चय विश्वास खत्म हो गया, शक अनुमान शुरू हो गया, संशय शुरू हो गया, अनुमान आपस में विश्वास खत्म हो गया, फिर चिंता और भय शुरू हो गई, पहले बेफिक्र रहते थे अभी क्या हुआ चिंता शुरू हो गई, और पहले क्या थे निर्भय थे अभी डर लगने लगा भय, पहले धीरे पेशेंस थी अभी क्या हो गया जल्दबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन, ईर्ष्या द्वेष हो गई, पहले विश्व कल्याणकारी व्यक्ति थी अभी क्या हो गई सब ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे गिराना शुरू हो गया, राइट, दूसरे कारण और बीमारियां बढ़ी, राइट, आपस में झगड़े शुरू हुए, राइट, झगड़े एक दूसरे को अटैक करने लगे, तो झगड़े सारा, फिर इसलिए कंगाली आ गई, पॉपुलेशन बढ़ी, है ना, बाबा के टाइम कितने कितनी पॉपुलेशन थी धरती पे 200 करोड़, अभी कितनी है 815 करोड़, है ना, तो बाबा के आने के बाद 615 करोड़, तो बाबा के आने के बाद आए हैं 90 साल में, है ना, नहीं तो हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे से, किसके कितने जन्म, एक जन्म किसा, दो जन्म, नहीं 600 करोड़ से ज्यादा आत्मा तो कैसी है, एक दो जन्म वाली, कुछ आत्माएं तो ऊपर से भी 5 साल पहले आई हैं परमधाम से, कितने साल पहले, कुछ 2 साल पहले आई होंगी, अभी उतरी हैं 2025 में उतरी हैं परमधाम से सीधे, कितने साल रहेंगी धरती पे 5-6 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे बस, है ना, तो कितने पाप कर्म किए इन्होंने, हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, देखो कितना वो तो सब कुछ गलत करता है, सब कुछ मस्ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखो मेरे को तो इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफें, क्योंकि उनका उन्हें पाप ही ज्यादा नहीं किए, वो तो अभी अभी उतरे ना, हम ही सबसे हमसे पुराने हैं, हमने 63 जन्म पाप किए हैं, तो पाप कर्म ज्यादा किसके हैं, हम उनके कितने पाप कर्म हैं, कितने पाप कर्म हैं, हम 9 लाख आत्माओं के ज्यादा पाप कर्म हैं, ठीक है ना, और त्रेता के अंत तक 2 करोड़ ही पॉपुलेशन होती है, तो 2 करोड़ त्रेता के अंत तक से 2 करोड़, 33 करोड़ तो हमारे देवी देवता परिवार की घराने की कलयुग के अंत तक की आबादी है, पढ़ना 1999-2000 की 15 दिसंबर 2099 की मुरली पढ़ना, है ना, बाबा ने 50वें नंबर पेज पे देख पढ़ना, बाबा ने बताया कलयुग हमारे जो देवी देवताओं के घराने की आदमशुमारी कितनी, तो कलयुग के अंत तक 33 करोड़ है, कलयुग त्रेता के अंत तक नहीं, भारत के बाद 1947 में कितनी थी 34 करोड़, है ना, तो अभी तो 3 भारत और ऐड हो गए ना, 47 में 34 करोड़ थी, तो त्रेता के अंत तक कितनी होगी, जो 33 करोड़ हो सकती है, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही ना, तो इसलिए समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करते, धीरे धीरे नीचे गिरते गए, जैसे हमने पहला जन्म हमने त्रेता में लिया, द्वापर में लिया, तब तक तो हमारा 100% मन कॉन्शियस था, कॉन्शियस चेतन था, हम जो सोचते थे वही होता था, फिर हमने 21-22वां जन्म में पाप कर्म किया, काम क्रोध लोम अहंकार के वश कर्म किया, तो क्या हुआ वो कहां गया, हमारी कॉन्शियसनेस ने, हमारी चेतना ने, दिल को उसको, दिल ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो फाइल कहां गई, सब कॉन्शियस माइंड में गई, इसे चित कहते हैं, राइट, वो फाइल सब कॉन्शियस माइंड में जा गई, जो जो पाप कर्म क्या कहां गया, सब कॉन्शियस में गया, और जब हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन काम कर रहा होता है, और जैसे हम सोते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव, चित एक्टिव हो जाता है, सपने कहां से आते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से, तो द्वापर युग से सपने आने लगे, जो दिन में हमने गलत काम किए सपनों में के रूप में रात में सपनों में आए, राइट, इसलिए हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो गई, हमें आलस आने लगा, हम देर से उठने लगे, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद देर से उठने लगे, समझ रहे हैं सभी, हम देर से क्यों उठने लगे, देर से सोना, देर से उठना शुरू हुआ ना धीरे धीरे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना। 22वां जन्म में जो पाप कर्म किए गए तो उसके आधार पे 23वां जन्म मिला, तो 22वां जन्म के पाप कर्म क्या बन गए, अनकॉन्शियस माइंड बन गया। तो 22वां जन्म में जो भी कर्म गलत काम किए वो क्या बन गया, हमारा एक जन्म का अनकॉन्शियस माइंड, उसके आधार पे 23वां जन्म मिला। फिर 23वां जन्म में जो हमने पाप कर्म किए, गलत काम किए विकारों के वश, वो 23वां जन्म का सबकॉन्शियस माइंड बन गया, समझ, चित्त बन गया। चित्त से चिंतन चलता है ना, चित्त बेचैन, गलत काम किया तो क्या होगा, चित्त मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण, कौन सा दर्पण, दिल रूपी दर्पण में देखो, दिल तो गंदा हो गया था, दिल में बाबा तो चला गया था, दिल से अभी सच्चा नहीं था, दर्पण साफ नहीं था, तो हमें दिखाई नहीं देता था हम क्या कर रहे हैं, बेसमझ बनते जा रहे थे, है ना, समझदार नहीं रहे थे, है ना, मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं लग रहा था, चित्त में क्या हो रहा है पता ही नहीं था, बुद्धि की लाइन एकदम जो क्लीन और क्लियर थी वो क्या हो गई, अभी धूमल होती गई, बिगड़ती गई, लाइन क्लियर नहीं रही अभी, ठीक है। जो सोचते कुछ और थे, होता कुछ और था, जजमेंट ही नहीं दे पाते थे, निर्णय नहीं कर पाते थे, जैसे कंप्यूटर में होता ना स्पैम में जाती ना फाइल, कहाँ चली जाती है फाइल, कहाँ जाती है, अगर आप सेव नहीं करो तो कहाँ जाएगी फाइल, बिन में जाती है ना, डस्टबिन बिन होती है ना कंप्यूटर में, तो ऐसे फाइलें सबकॉन्शियस में जाती रही। तो वो फिर उसके आधार पर जब 23वें जन्म में पाप कर्म किए तो क्या हुआ, अब 22वें 23वें जन्म का हमारा क्या बन गया, अनकॉन्शियस माइंड, अब अचेतन मन बन गया, उसके आधार पर हमको 24वां जन्म मिला, और जो 24वें जन्म पाप कर्म किए वो क्या बन गया, हमारा 24वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड चित्त बन गया, समझ रहे हैं आप सभी, हा? उसके आधार पर फिर क्या हुआ, 22वां 23वां 24 के आधार से 25वां जन्म मिला। बाबा ने कहा जैसे जैसे जन्म कर, पाप कर्म जैसे करते जाएंगे कर्म, उसके आधार पर प्राप्ति, या हमने किसी किसी जन्म में हमने धर्मशाला बना दी, कॉलेज बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, तो उसके हिसाब से हमें अगले दिन वो चीजें मिल गई, जो अच्छा किया वो अच्छा, बाकी सारा बुरा, समझ रहे। तो ऐसे कर्म करते करते अब क्या हो गया, हम कहाँ पहुंच गए, 83वें जन्म पे आ गए। तो 22वें जन्म 82 जन्म का 62 जन्म का अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन माइंड मन, उसके आधार पे हमको 63वां जन्म मिला, राइट। और उस जन्म में 62वां जन्म मिला, और इस जन्म में जो पाप कर्म किए वो कहाँ जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में जा रहे, राइट। और अभी जब बाबा मिला तो 84वां जन्म शुरू हुआ, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड एक जन्म का और बाकी पिछले जन्मों का अनकॉन्शियस माइंड, और चेतन मन कितना रह गया, अभी पहले बोलते 90% मन हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, 10% ही हमारा कॉन्शियस मन है। अभी अभी बताते हैं साइंस वाले कि अभी सिर्फ 97% मन हमारा अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, सिर्फ 3% मन ही हमारे कंट्रोल में है, चेतन मन है। इसलिए आपने देखा होगा हम प्लान बनाते हैं, अमृत वेले बनाते हैं, प्लान बनाते हैं सारे दिन में, मन का भी बाबा ने कहा ना पीछे मन का टाइम टेबल बनाओ, कहा ना पीछे मुरली में 2 हफ्ते पहले की, तो टाइम टेबल बनाते हैं ना सुबह, रात को चेक करो कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट होता है, 5% भी ठीक से नहीं होता है, होता है 5% एक्यूरेट फॉलो होता है, नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि मन हमारा क्या है, सबकॉन्शियस, हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। सुबह मुरली सुनते इतनी प्यारी लगती है, दिन में बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, जेब में भी रखते हैं, कागज भी जेब में रखा भर, कि तो फिर भी दुनिया भी बातें भूल जा, याद आ जाती है, बाबा की मुरली नहीं याद आती, आती है, आती है मुरली चित्त, क्योंकि चित्त में क्या है, चित्त में वही सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें भरी हुई है, दुनिया भी बातें भरी है, चित्त बेचैन है, और चित्त के आधार से चिंतन चलता है, समझ रहे। तो अभी हमारे पास क्या है, पाप कर्म कहाँ है, 62 जन्म के अनकॉन्शियस माइंड और एक जन्म का सबकॉन्शियस माइंड, और बाबा का बनने के बाद हमने क्या किया, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 10 साल 20 साल, बाबा का बनने के बाद एक्यूरेट काम किया क्या, एक्यूरेट श्रीमत फॉलो किए, कितना हो गया, 1 का 100 गुना, तो कितना हो गया, कितना सबकॉन्शियस माइंड हो गया, फील होता है ना अभी भी, अरे बाबा का बनने के बाद मैंने गुस्सा किया, मैंने ऐसे किया, ऐसे होता है, फील होता है, पहले फील नहीं होता था, पहले कहते थे ठीक है ना, होना ही करना ही पड़ता है ना, दुनिया की रीत है, बाबा का बनने के बाद तो हर चीज फील होने लगी, नहीं होने लगी, बहुत फील होती है ना, थोड़ा सा भी गलत होता है तो क्या करते हैं, दिल खाती है ना, नहीं खाती, तो वो अंदर और उसका भी बोझ सबकॉन्शियस और भारी हो गया, इसलिए ब्राह्मण ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ब्राह्मणों की मानसिक अवस्था भी खराब हो जाती है, नहीं होती कर्म भोग। और कर्म भोग भी ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि पाप कर्म हमारे ज्यादा है। ब्राह्मणों को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, मोटापा भी है, एसिडिटी भी बनती है, कब्जी भी होती है, पेट खराब भी रहता है, सिर दर्द भी होता है, नहीं होता, कमर दर्द भी होता है, नहीं होता, और सबसे ज्यादा ही होता है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा है ना हमारे। कभी नहीं बोलते बाबा के जब बने तो हमारा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी, बाबा का बने के ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, नहीं होता, केवल सोचते हैं ना अंदर से, नहीं सोचते। अब रिटर्न जर्नी कैसे करें? जब हमारा जब 100% मन कॉन्शियस था तो हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर 100% थी। अभी हमारी क्या कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है? हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, करते हैं फिर भी होता नहीं है। होता है 100% होता है क्या? नहीं। कब होगा? जब हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा और अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा पूरा, तो 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा, उसी को फरिश्ता कहते हैं। जब हमारा मन 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हम थ्रू एंड थ्रू देख सकेंगे, वही मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना, हमारा दिल भी सच्ची साफ हो जाएगी और हमारा मन भी एकदम स्वच्छ हो जाएगा, 100% कॉन्शियस, कुछ भी पाप रहेगा नहीं। तब इसके परली तरफ क्या है? सत्युग है। अभी हमें सत्युग की सीन सिंधी क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि इसके हमारा ये जो मन है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बीच में पाप कर्म है। गीत एक भजन था, मेरे कभी कभी जचाऊं मिलूं आपसे, क्या था, मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, कभी जचाऊं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। बाबा कहते हैं जो पाप कर्म किए ना, इसलिए योग नहीं लगता है। जैसे जैसे हमारे पाप कर्म का मतलब योग लगने लगेगा। आज बाबा ने कहा मीठी सैक्रीन है बाबा, बहुत प्यार से बाबा को याद करना, पर याद क्यों नहीं आती है? क्योंकि पाप कर्म हमारे संस्कार ऐसे पड़ गए, संस्कार हमें याद नहीं करने देते हैं। यही माया है, ये मेरे किए पाप कर्म ही माया है, माया कुछ और नहीं है। माया किसे कहते हैं? मेरे किए पाप कर्म ही माया। तो रिटर्न जर्नी का मतलब क्या है? रिटर्न जर्नी का मतलब अब मुझे जब से अब ये हमें कहां से शुरू करना है? देखो सबसे पहली चीज हम ब्रह्मा बाबा को देख लें, है ना। एक मुरली थी अभी, उसमें बाबा रिटर्न जर्नी के ऊपर मुरली थी, तो बाबा ने कहा कि रिटर्न जर्नी माना रिटर्न, मुझे अभी अब रिटर्न करना है, अब मुझे कैसे करना है? ब्रह्मा बाबा ने जो किया, हर चीज को ब्रह्मा बाबा से तैयारी करना है, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म, कुछ भी सोचने से पहले सोच लो कि ऐसी स्थिति में बाबा अगर होते, ब्रह्मा बाबा वो क्या सोचते? क्या ब्रह्मा बाबा को जो मुझे संकल्प चल रहा, ब्रह्मा बाबा कैसे संकल्प चलता? नहीं चलता, नहीं नहीं, तो उसको फुल स्टॉप लगा दो, मुझे नहीं करना है संकल्प। बोलने से पहले देखो ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलते कभी? ऐसी परिस्थिति हो तो भी ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बोला? ब्रह्मा बाबा सामने सब प्रॉब्लम्स आई कि नहीं आई थी? ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बोला कभी? कभी नहीं बोला, तो मुझे नहीं बोलना है। कुछ भी कर्म करने से पहले देख लो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, कर्म ऐसा किया, नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना। तो हर चीज में ब्रह्मा बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जैसे ही बाबा को 28 में वैसे बाबा को अंतर्मुखी रहने लगे थे, दादी थी ना, दादी निर्मल शांता, उनसे हम बहुत बैठते थे, दादी निर्मल शांता थे, पुट्टू दादी थे, दादी की छोटी बहन थी, वो बॉम्बे में रहते थे, उनका एक्सीडेंट 3 साल हमारे पर रही, हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में दाखिल रही, तो रोज हम आधा घंटा रोज शाम को बैठते थे, बाबा के अनुभव सुनाते थे हमको। सूर्य बहन भी दादी की बेटी थी, बॉम्बे में है, वो भी आती थी हमारे पास, तो उनसे भी अनुभव सुनते थे। तो बाबा को 28 में बाबा अंतर्मुखी होते जा रहे थे, 32 में तो बाबा ने क्या किया देखा ना, बाबा ने कचहरी लगाते थे रोज, बुद्धिमन संस्कार की कचहरी लगाते थे, बात करते थे। तो हमको पहले अंतर्मुखी हो जाना है। अगर सचमुच रिटर्न जर्नी का मतलब क्या है, बाह्यमुखता और अंतर्मुखता साथ साथ नहीं चल सकती, रिटर्न जर्नी हो नहीं सकती। जो लोग बाह्यमुखी है वो कभी रिटर्न जर्नी कर नहीं सकते। अगर हमको रिटर्न जर्नी करना है, बाप के समान बनना है, अपने आप को टर्न करना है, अपने को बाप समान बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? टर्न करना, हमें पहले बाबा जैसे अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा से कंबाइंड होकर, पावर हाउस से कंबाइंड होकर सोचना, बाबा से कंबाइंड होकर निर्णय करना, बाबा से कंबाइंड होकर देखना, बाबा से कुछ पढ़ना है बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ना, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, बाबा से कंबाइंड होकर सांस लेना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना, बाबा से कमांड होके भोजन करना, बाबा से कमांड होके क्या करना, पानी पीना, कुछ भी पीना है तो बाबा से कमांड होके, बाबा से कमांड होके हर कर्म करना, बाबा से कमांड होके चलना, सारा व्यवहार बाबा से कमांड होकर करें, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। अंदर में जो मैं आत्मा बाबा से कमांड होकर, हर समय टेंशन रहे और अपनी रोज दरबार लगाए सोने के पहले, दिन में भी लगा सकते हैं, अपने मन बुद्धि संस्कार से पूछें कि मन कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री तुम कंट्रोल में है सब कुछ, तुम्हारी गाड़ी सब कंट्रोल में है, बुद्धि ठीक निर्णय कर रही है, संस्कार आसुरी संस्कार इमर्ज तो नहीं हुए सारे दिन में कोई, चेक करना है, रोज दरबार लगाओ, कचहरी लगाने की आवश्यकता है, ठीक है, आज से शुरू कर दो। तो जैसे जैसे बाबा को अंदर का सुख मिलने लगा ना, जब हम ऐसे करते अंदर का सुख मिलने लगता है, आत्मा के जो सातों गुण है ना, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन माना संबंध और डी को ड्रामा, कर्म सिद्धांत जो हमने किया है उसका फल हमें मिला है अभी तक, है ना, जो भी हमारे साथ हुआ अभी तक हुआ अच्छा या बुरा मेरे अपने कर्मों का फल है, जो मैंने बोया वही काटा है, परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है, उसे फुल स्टॉप लगा के अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रह के अब कर्म करना है तो भविष्य मेरा अच्छा होगा, बाबा की श्रीमत पे करना, तो ऐसे अपने आप से हम बात करते हैं राइट। और तो अंतर्मुखी होकर हम देखें क्या क्या करें, क्या देखें, तो जैसे हमने ये किया अंतर्मुखता का अभ्यास करते करते अंदर का सुख ज्ञान अर्थात सत्य की समझ आने लगती है, पवित्रता आने लगती है, शांति सच्चा स्नेह का अर्थ समझ आने लगता है, अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति आने लगती है, थोड़ी थोड़ी अंदर का सुख मिलने से क्या होता है बेहद की वैराग्य वृद्धि होने लगती है। ब्रह्मा बाबा को 34 में क्या हुआ था, विनाश का साक्षात्कार बॉम्बे बनारस में हुआ था ना, जब बाबा बैठे थे गार्डन में बनारस एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो बाबा को वहां विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने देखा कि सब मिसाइल गिर रही हैं, बम गिर रहे हैं, है ना, बिल्डिंगें धराशायी हो रही हैं, ताश के पत्ते के माफिक ढह रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया, हम क्या कर रहे हैं, हम साक्षात्कार करें रियल में देख रहे हैं, हम तो रियल में देख रहे हैं कैसे बिल्डिंग बम गिरता है, मिसाइल गिरती है, एकदम सारी खत्म हो जाती नहीं हो जाती, होती नहीं होती, हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी आ रही हैं, सिविल वार भी देख रहे हैं, हो रहा नहीं, और सिविल शुरू तो हो गए ना, सिविल वार झगड़े शुरू हो गए नहीं, वो भारत में भी शुरू हो गए, तो मतलब ये सब कुछ हमारे बाबा ने तो सिर्फ साक्षात्कार किया था, हमने तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो बाबा को बेहद की वैराग्य वृद्धि, बेहद बेहद माना सारा विश्व, वैराग्य माना वैर ना राग, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, किसी से वैर भी नहीं करना है, किसी से दोस्ती भी नहीं, ना वैर ना राग, राग में ना अटैचमेंट, वैर में ना दुश्मनी, तो सारे विश्व में किसी से भी द्वारी सबसे अटैच। तो पहले तो हमें भाई मुक्ता छोड़नी, मोबाइल टीवी ये क्या होता है इसमें, व्हाट्सएप यूट्यूब है ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा, बाप समान बनना नहीं बनना, बनना तो मोबाइल देखना पड़ेगा ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ेगा, अंतर्मुखी बन जाओ, हमारा समाचार न्यूज़पेपर नहीं है, बस बाबा की मुरली समाचार है, मैं तो कितने साल से नहीं पढ़ता, पता है आपको, एक जनवरी 31 दिसंबर 2008 को दादी ने कहा था, बट जानकी दादी ने अखबार नहीं पढ़ना, तो हम तब से हमने अखबार छोड़ दिया, कितने साल हो गए आज, 2 और 16, 18 साल हो गए, अखबार देखा नहीं है मैंने, पहले अखबार देखते थे आधा घंटा रोज, वो भी छोड़ दिया, तो अखबार भी देखना है क्या, नहीं टीवी भी नहीं देखना, मोबाइल भी यूज नहीं करना है ना, बहुत जरूरी, आप यूज करो, मोबाइल आपको यूज ना करें, ठीक है, अंतर्मुखी बनेंगे तो अंदर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, है ना, अंतर्मुखी ही अत्यंत सुख की अनुभूति कर सकता है ना, बाह्यमुखी वाला कभी नहीं कर सकता, तो हमें अंतर्मुखी, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति, फिर उससे अनासक्त वृत्ति आ, अनासक्त माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त माना फिर इच्छा नहीं रहेगी, ये देख लू ये खा लू, अभी आम आम आ गए आम खाएं, क्या बोलते हैं आम को, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, कैरी कैरी खाएं, क्या आमरस पिए, क्या क्या खाएं ना, ये करें वो करें, है ना, वहां देखाएं, इधर घूमाएं, गोवा घूमाएं, इधर घूमाएं, दुबई चले जाएं, है ना, कहीं इच्छा नहीं होगी, ठीक है, अनासक्त वृत्ति, जो मिला खा लिया, सिंपल सा मिला जो मिला खा लिया, राइट, अनासक्त वृत्ति हो जाए, उपराम वृत्ति, तब मन और बुद्धि ऊपर जाएगी, खाने में बुद्धि है, देखने में बुद्धि है, सुनने में बुद्धि है, तो क्या होगा, उपराम बुद्धि नहीं होगी, ठीक है, तब उपराम वृत्ति बनेगी, मन बुद्धि ऊपर जाएगी, तब एकांतवासी बनेंगे, तब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में जाएंगे, पवित्रता के सागर के अंत में जाएंगे, एकांत माना क्या, ज्ञान सागर का अंत क्या है, आत्मा बिंदु, बाप बिंदु, आप संबंध क्या, आत्मा बिंदु का परमात्मा से बिंदी बिंदी भाव से संबंध है, और ड्रामा क्या है, वही बिंदु है। तो क्या है ज्ञान का, ज्ञान सागर कांति क्या है, बिंदी। पवित्रता का सागर कांति क्या है, वही बिंदी है। शांति का सागर कांति क्या है, वही बिंदी है। स्नेह का सागर कांति क्या है, वही बिंदी है। तो एकांत माना मैं आत्मा बिंदी बिंदी भाव से कंबाइन, जो हो गया बिंदी, राइट। हमेशा बिंदी में टिक रहे, बिंदी और बिंदी, बेबी बिंदी, मैं भी बिंदी, और हम हमारा बाप भी बिंदी, और जो कुछ हो गया वो भी यही एकांत है। इसी में एकाग्र हो जाओ, राइट। इसी में हमेशा एकाग्र, फिर एक नामी आ जाएगी, फिर एक 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 मत हो जाएंगे, फिर एक रस हो जाएंगे। जब ऐसे होंगे ना अंदर का ये अंतर्मुखता बेहद, ये बाबा का दूसरा स्टेप था। फिर बाबा ने जब अंदर का सुख मिलने लगा, आप एकदम डिटैच हो गए, एकांतवासी बन गए। अभी बाबा के अंदर, बाबा के अंदर क्या हुआ, अभी बाबा ने अपना तन देखो, बाबा कब, शिव बाबा कब अंदर आया, हमारा दिल, ये दिल तो शरीर का है, अभी पिछला ना मुरली थी ना चौथे पेज पे, दिल कहाँ है, आत्मा में दिल है, आत्मा का दिल, जिस दिल में कहते दिल, दिल एक मंदिर है, तो दिल आत्मा का दिल, तो बुद्धि में दिल है, राइट। तो बुद्धि ही एक्चुअली, बुद्धि की बुद्धि में ही दिल है। तो दिल जो है, दिल में कौन आ गया, दिल में बाबा कब आएगा, था ना मुरली में, बाबा कहाँ रहता है, हमारे दिल में रहता है, बच्चों का दिल ही उसको पसंद है, हम कहाँ रहते हैं, बाबा के दिल में रहते हैं, बाबा को और कुछ पसंद नहीं, सच्ची दिल, साफ दिल, जब दिल सच्ची होगी तो बाबा मेरे दिल में आएगा ना, राइट। तो हमें देखना, बाबा शिव, ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा कब आया, जब बाबा के अंदर, बाबा ने अपने तन को समर्पण कर दिया कि बाबा ये तन तेरा है, मन भी समर्पण कर दिया, धन भी समर्पण कर दिया, और अपने संबंध संपर्क भी समर्पण कर दिया, दिल खाली हो गई। दिल में चार चीजें होती है, तन होता है अपना सबसे पहले तन, फिर दूसरा मन होता है, फिर धन होता है, और फिर तीसरा क्या होता है, संबंध संपर्क होता है, धन भी होता है और संबंध संपर्क भी होता है, चार ही चीजें होती हैं। चार चीज से हमारा योग लगा रहता है बहुत अच्छा, नहीं तो जब हम इस तन मन धन संबंध, तो दिल में मेरे बाबा आता है, राइट। मेरा दिल खाली हो गया ना, तो दिल में बाबा आ गया, शिव बाबा। तब कहते शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो दिल में क्या आ गया, कौन आ गया, शिव बाबा आ गया, कौन आ गया, वही अंदर से महसूस करो, ज्ञान का सागर आ गया, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा ने माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। तो बार बार इसको रिवाइज रियलाइज करो कि मेरे दिल में कौन आ गया, कहाँ है दिल, यही तो है दिल, आत्मा जहाँ है वही तो दिल है। तो बाबा ज्ञान का सागर दिल में बैठा हुआ है, पवित्रता का सागर अर्थ सहित महसूस करो, शांति का सागर दिल में बैठा हुआ है। शांति माना विचारों से परे, पास का एक भी विचार नहीं, भविष्य का एक भी विचार नहीं, वर्तमान में अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड। प्यार माना जो जैसा भी है, घर में या बाहर कार्यस्थान पर, हर एक का अपना अपना पार्ट है, सबके हर एक के उसके उसके पार्ट के साथ स्वीकार करना, उसकी पालना करना। आज के मुंडी ना, तू प्यार का सागर है, बाबा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, सबको एक्सेप्ट करता है, आतंकवादी को, बीके नॉन बीके, आतंकवादी, चोर डाकू, पुण्य आत्मा, सबकी पालना कर रहा है, इसीलिए उसको प्यार का सागर कहते हैं। इसे हर आत्मी विश्वास से उसके पास जाता है, हर आत्मा उसके पास जाती है, जाते नहीं जाती, आतंकवादी भी उसके पास जाता है नहीं जाता, वो लगता है मेरे को सब बातें बता सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ये तो आतंकवादी है, ये तो चोर है, ये तो बीके नॉन बीके, ये तो सीमत पे नहीं चलता है, उल्टे काम करता है। तो हम प्यार के सागर नहीं है, हम हमारे अंदर हमारी दिल क्या है, छोटी दिल है, उसकी दिल बहुत बड़ी है। हमें कैसा बनना है, बाप के समान, तो हमें जो है ये उसको प्यार का सागर है, मेरे दिल में बैठा है, मेरा बाप प्यार का सागर, मैं क्या हूं, मेरे को भी ऐसे ही बनना है ना, बाप समान, सबको एक्सेप्ट करना, सबकी पालना करनी, अत्यंत सुख का सागर, आनंद का सागर है, महसूस करो बाबा को, आनंद का सागर है, सर्वशक्ति सत्य को प्रकटने शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का सागर है, समेटने की शक्ति का सागर है, समेट के बैठा ऊपर, अशरीर स्थिति का सागर है वो, निराकारी स्थिति का सागर है वो, बीज रूप स्थिति का सागर है वो, सहन करने की शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर है, सहयोग करने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है वो, और सातो एनर्जी का बैलेंस का सागर है वो, सातो एनर्जी का बैलेंस है। हम लोगों में ज्ञान, किसी में ज्ञान ज्यादा है, पवित्रता कम है, किसी में पवित्रता है, शांति नहीं है, कोई ना कोई शांत विचार आता है, कोई ना कोई प्यार किसी से कम है, कोई किसी में अत्यंत सुख की अनुभूति कम है, आनंद की इच्छा है तो अत्यंत सुख नहीं अनुभव, पर वो सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर है। सातों एनर्जी के बैलेंस से हीलिंग एनर्जी बनती है, वो हीलिंग हो जाती है, हीलिंग कर सकता है। एक भी एनर्जी थोड़ा कम ज्यादा होगी तो हीलिंग नहीं होगी, कोई बीमारी हील करनी हो नहीं हो सकती है। और फिर ज्वालामुखी शक्तिशाली हो गई का सागर है। तो मेरे दिल में ऐसा बाबा बैठा हुआ है, ये बार बार रिवाइज चलते फिरते बाबा के समान बनना ना, टर्न करना ना अपने आप को। तो दिल में मेरे बाबा है, इसको बोलते सच्ची दिल, जिसके दिल में हमेशा बाबा है। सारा दिन ये रिवाइज और रियलाइज करो, महसूस करो, रियलाइज में सच्चे दिल से बार बार रिवाइज करो और रियलाइज में सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ। ये मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म है, पुराने जन्म से मर गया, मर जीवा। अगर देवाना देवीमान आ गया तो मैं अभी ब्राह्मण नहीं हूं, राइट। सच्ची दिल, सच्ची दिल माने बाबा के जैसा कोई और ना हो। जब सच्ची दिल बन जाते तो बाबा की बातें याद आती हैं, बाबा की श्रीमत याद आती है। बाबा ने क्या बी होली बी योगी, ये बाबा की श्रीमत है, मनमत परमत जरा भी नहीं है, राइट। तो ये जब बात सच्ची दिल, ये साफ दिल कहते हैं, जिसमें श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत ना हो ना, तो उसे बोलते हैं साफ दिल। जब सच्ची दिल साफ दिल मां के रूप में दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, अब जैसे ही तो क्या होता है, बाप जैसे दिल सच्ची साफ होती है, बाप ने आपने सुना होगा मुरली में, बाबा हमें दो दिव्य ब्राह्मण जन्म की दो हमारे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट है, कौन कौन सी बोलो, बहने बताओ, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है। गिफ्ट तो मिली है पर एक्टिव कब होगी, जब दिव्य ब्राह्मण जन्म हमारा होगा, दिल सच्ची साफ होगी तो बाप के द्वारा हमको दिव्य दृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि के ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, एक्टिव हो जाता है, तब हमको मुरली समझ में आने लगती है। ये तो आज की मुरली ना, मुरली के नहीं तो गहराई, मुरली की बहुत गहराई है। ये चार पेज की जो मुरली ना, मेरे लिए इसका ऐसी महावाक्य का अर्थ कुछ और है, आपके लिए कुछ और, हर एक के लिए अलग, उसको उसका मीनिंग अलग है, उसकी गहराई अलग है मेरी स्थिति के अनुसार, तो उसकी गहराई समझ में आने लगी। ABCD ज्ञान का सागर है ना, ये ज्ञान, ज्ञान माने ए आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, आत्मा के साथ चैतन्य आत्मिक ऊर्जा है, मन के माध्यम से आत्मा एनर्जी बॉडी को दे रही है। मन माना विचार भावना टीम, विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति के माध्यम से आत्मा ज्ञान को, ज्ञान पवित्रता शांति मेरी बॉडी की एक कोशिका में जा रही है। विचार किसके माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, और वृत्ति माना दृष्टिकोण के माध्यम से, और यादों के माध्यम से। अगर यहीं पे कुछ नेगेटिव है तो क्या हुआ, एनर्जी ब्लॉक। कितना मर्जी आप योग कर लो, अगर आपकी यादें गलत है, स्मृतियां गलत है, आपका वृत्ति गलत है किसी के प्रति, अपने प्रति या किसी के प्रति, भावना गलत है, संकल्प गलत चलते हैं, तो आपकी एनर्जी बॉडी में नहीं जाएगी। कई बार हम बहुत योग करते हैं कि तो विचार किसी के प्रति मैं रखा है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बहन ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, ये मेरी जान का दुश्मन है ना, तो क्या होता है, आपकी कितना मर्जी तो आपका शरीर पर असर नहीं होता उसका, आपके चेहरे पर रौनक नहीं आती, आप सच्चे दिल से चेहरे और चलने से पवित्रता महसूस नहीं होती है। शरीर पर योग प्रयोग का कर्म, कर्म देह के कर्म भोग पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, राइट। तो टीम हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, और फिर हमारे शरीर एनर्जी शरीर में जानी है, शरीर को जब तो शुद्ध सात्विक भोजन नहीं देंगे ना तो क्या होगा, एनर्जी शरीर में जाएगी नहीं। रोज सैर नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक सैर नहीं करेंगे, एनर्जी जाएगी नहीं। प्रॉपर नींद नहीं करेंगे, एनर्जी बॉडी में जाएगी नहीं। थोड़ा रासिक भोजन खाया, पराठा पकौड़ा समोसा खाया तो क्या होगा, बॉडी रिसीव नहीं करेगी। कितना मर्जी योग लगा लो, कितनी मर्जी टीम पॉजिटिव, कितनी मर्जी मुरली टीम बनती है पॉजिटिव मुरली से, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है परमात्मा की याद करने से, है ना। और मुरली में शिक्षा सावधानी मिलती है ना, तो वो पता लगता है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे सैर करनी है, क्या करना है, सोना कैसे, सब बातें बाबा बता मुरली में बताते ना, सारा बताता है। तो वो जो है हमें बाबा से मिलते, तो ये ऐसे तब सब, तब ये तीसरी आंख खुलती है ना, तो फिर समझ में आने लगती है, समझ नहीं आती मेरे को क्यों सिर दर्द हो रहा है, मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरे सिर में क्या हो रहा है, मेरे कान में क्या हो रहा है, मेरी शरीर की हड्डी खराब क्यों हो रही है, मेरे घुटने काम क्यों नहीं कर रहे, समझ नहीं आता है। मेरे को उदासी बार बार क्यों आती है, मेरे को चिंता क्यों होती है, डर क्यों लगता है मेरे को, मैं आत्मा हूं फिर डरने की बात है, बाबा साथ है फिर डरने की बात क्या, समझ नहीं आता है। तीसरी आंख खुले तो समझ में आता है, तो कब कब तीसरी आंख खुलेगी, जब दिल सच्ची और साफ होगी, दिल में बाबा के अलावा कोई नहीं होगा, साफ माना श्रीमत के अलावा कुछ और नहीं होगा, बस तब मुरली समझ में आनी शुरू होती है। तो ए बी फिर बाबा ही साथ चैतन्य आत्मा को जो सागर है, पावर हाउस है, और वही मुरली सुनाता है और वही हमको शिक्षा सावधानी देता है। फिर करंट कब आएगी, करंट कब आएगी? करंट तब आएगी जब हमारे अंदर सत्यता होगी। सत्यता माना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति होगी, इमर्ज होगी, परमधाम वाला स्वरूप और देवी देवता स्वरूप की इमर्ज होगी, तब करंट अंदर आएगी। पवित्रता माना अपना स्वरूप वही इमर्ज रहेगा, सामने वाला का वही इमर्ज रहेगा, युगल हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसका भी वही स्वरूप इमर्ज। इसको बोलते पवित्रता। अपना स्वरूप इमर्ज है ये मेरे सत्यता है, और दूसरे का स्वरूप इमर्ज होकर व्यवहार, इमर्ज करके मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये पवित्रता है। निर्भयता, बुद्धि रूपी आंख परमधाम में लगी रहे और मन रूपी आंख कहां लगी रहे? कहां लगी रहे? अपने लक्ष्य पर, सत्युग में अपने लक्ष्य, मेरा क्या है, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है, राइट, इस पे लगी रहे। तो निर्भय हो गए नहीं हो गए? मेरा बुद्धि भी यहां नहीं, मन भी यहां नहीं है, तो निर्भय हो गए ना। और फिर दैवी गुणों की धारणा है ना, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। ब्राह्मण कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है हमारी, पवित्रता हमारी सभ्यता है, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, वही चार नियम चार मर्यादा हमारी कल्चर है। सत्संग बस बाबा और मुरली का संग, कोई और चीज का संग नहीं, मोबाइल में रील देखना, कुछ देखना, ये सुनो वो सुनो, नहीं, बाबा और बाबा की मुरली, अभी उसकी क्लास सुनी, अभी उसकी क्लास सुनी, अभी उसकी क्लास सुनी, सारा टाइम सुनते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। कई लोग इतना खाएं, काम कुछ ना करें, फिर क्या फायदा है? फायदा है। कई लोग गाने सुनते रहेंगे, क्लासेस सुनते रहेंगे, धारणा में कुछ भी नहीं आएगा। हमारी कार ऐसी हो, 10 लीटर पेट्रोल डाला, 1 किलोमीटर चली, क्या हुआ? फायदा है? खाया बहुत सारा, ताकत जरा उठने की भी नहीं है, थोड़ा खाओ ना, बाबा ने 2 लाइन सुनाई, 2 लाइन ही प्रैक्टिकल में चलाओ ना, 100 किलोमीटर चलो ना। इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, है जी, हाँ, हजम करना ना, खाली खाने की बात थोड़ी ना है, हजम भी तो करना है, ताकत तो हजम करने से आएगी, खाने से आएगी। सारा दिन खाते रहो, उसकी क्लास सुनी, उसका ये किया, गाना सुना, ये सुना, कुछ प्रैक्टिकल तो कुछ परिवर्तन नहीं किया, सुना तो ऐसे। तो इसलिए हमें शुद्ध, मतलब ये जो है हमारा, ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है, तो करंट ये चार बातें, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। अमृत वेला पावरफुल, मुरली पावरफुल, क्योंकि जब ऐसा होगा तो मुरली पावरफुल होगी ना, तब तो योग लगेगा, तभी तो हमारी क्या होगा, तभी तो मुरली याद रहेगी दिन में, तभी तो सोने के पहले लेटर लिखना याद रहेगा। पुरुषार्थ नहीं किया तो लेटर कैसे लिखेंगे बाबा को, पोता मेल, मैंने कुछ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ करता है लेटर लिखने का, उसका दिल करेगा ना, मैंने पुरुषार्थ कुछ नहीं, लेटर क्या लिखूं बाबा को, अलबेला रहा तो मुरली, लेटर क्या लिखना है, पोता मेल क्या देंगे, देखिए टाइम ही नहीं होगा, सुना, तो पोता मेल देना, ये हमारे क्या है कल्चर। और करंट कब खींच सकते हैं, पहले सत्य की समझ की गहराई हो, बाबा ने एक मुरली बताया, करंट कब खींच सकते हैं, सत्य की समझ की गहराई हो, गहराई समझा हो, ABCD को गहराई से, मुरली को समझा हो गहराई से, राइट। दूसरा धैर्यता, करंट एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है। आपने मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं, लगाया और निकाल लिया, हो गया चार्ज, कितने देर रखते हैं, 45 मिनट तो रखना पड़ता है ना, 1 घंटा तो रखना पड़ता है ना, तो पेशेंस रखनी पड़ती, धीरे धीरे बैटरी चार्ज। हमारी तो कितने साल की बैटरी डिस्चार्ज है, 5000 साल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्ज कैसे होगी, एकदम हो जाएगी, लाया हो गई, तो करंट जो ऊपर गए सूक्ष्म वतन में गए, तुरंत नीचे भाग आए, तो क्या हुआ, बैटरी चार्ज हो गई, नहीं हुआ ना। परमधाम में बैटरी चार्ज होती है, सूक्ष्म वतन बैटरी चार्ज नहीं होती है, कहां चार्ज होती है, परमधाम। शरीर बन के परमधाम घर में जाओ तो बैटरी चार्ज होती है, सूक्ष्म वतन में चार्ज नहीं होती, वैसे डिस्चार्ज नहीं होती, बस 45% है तो 45% रहेगी, 40 नहीं होगी, क्योंकि परमधाम में 100% हो जाएगी। यहां भी कितना मर्जी योग लगाओ, यहां चल कर्म योगी बन के रहे तो भी बैटरी चार्ज नहीं होती, डिस्चार्ज की स्पीड कम हो जाती है, राइट, समझ गए। मोबाइल तो सब चार्ज देखते हो ना, रोज रखे रखे भी डिस्चार्ज होता रहता है ना, रखे रखे ना यूज करो तो भी डिस्चार्ज होता रहता, नहीं होता, होता है ना, सेम चीज हमारी, हम बैठे हुए तो भी बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहे, डिस्चार्ज तो हो रही है ना, तो ऐसे हमारी बैटरी। तो पहले क्या, सच्ची दिल, साफ दिल, क्या है, ऊपर जाना ना, रिटर्न जर्नी का पासपोर्ट है, क्या है, पासपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए, वापस बाप के साथ घर जाने तक पासपोर्ट क्या है, बाप के साथ वापस घर जाने का पासपोर्ट क्या है, बताओ, बोलो, शर्मा रहे हो, सच्ची दिल, साफ दिल, जिस दिल में बाबा है ना, बाबा के अलावा थोड़ा भी कुछ है ना, आज की मुंडी ना, देहधारी थोड़ा भी है तो क्या होता है, बाबा की याद नहीं आती है। कल की मुरली में भी था ना, किसी भी देहधारी की थोड़ी भी याद है तो बाबा दिल में ही नहीं रहेगा, बाबा से निकल जाएगा। कोई देह, कोई वस्तु, कोई वैभव तो दिल में आ गया तो बाबा निकल, हम दिल तब बाबा, पासपोर्ट चला गया, कैंसिल हो गया। तो पासपोर्ट क्या है रिटर्न जर्नी का? सच्ची दिल, साफ दिल। तो ये जब ज्ञान की हम गहराई से सब समझते हैं, ABCD ड्रामा, तो सी समझ में है ना, तो पहले हमने क्या करना है, मुरली की बहुत गहराई में जाओ, रिवाइज करो एक एक लाइन को, फिर एक लाइन को सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा मेरे लिए कह रहा है, बच्चे मैं प्यार का सागर हूं, है ना, मेरे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता है, प्यार मना, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा मुझे स्वीकार करता है। दुनिया भर रिजेक्ट करते हैं, तुम तो खराब हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर कली नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना, है ना, वो पापा कहता है तू जो है जैसा है मेरा, तू आ जा मेरे पास, नहीं मेरे दिल में आके बैठ जा, वही कहता है बस, वही इसका जितना मीठा कोई भी नहीं है, मीठा मतलब सत्व प्रधान, सातों गुणों का सागर है वो, मुझे मीठा बना रहा है, राइट। तो ऐसे अपने आप को बार बार याद दिलाना है। तो सच्ची दिल सात दिन मिल गई, पासपोर्ट मिला, अब वीजा क्या होगा? जितना मुरली को रिवाइज करते जाओगे, मैं रिवाइज में सच्चे दिल से महसूस करोगे, बाबा ने मेरे बाबा ने मुझको, दिल में होता उसकी याद आती है, जो दिल में होता उसकी याद अपने आप आती है, जो दिल में नहीं होता उसकी याद नहीं आती है, याद करना पड़ता है, भूल जाता है, जो दिल में होता उसकी याद सताती है। तो फिर बाबा की मुरली, मुरली बाबा की मुरली याद आना ही तो बाबा की याद है। मेरी माँ ने मुझे ये कहा था और उसको मैं बार बार सोचता हूँ, मेरी माँ ने मुझे कहा, यही तो माँ की याद है, फिर मुझे वैसा बनना है, यही तो माँ की इच्छा पूरी कर रहा हूँ ना। तो मेरे बाबा ने, ये बाबा की मुरली क्या है, बाबा की इच्छा है ना, हमारे लिए इच्छा है कि बाबा ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे बन जाएं, ये होमवर्क है ना, ऐसा बनना है ना हमको, नहीं तो बार 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 ना दिल से करो। पर याद रहे, मुरली कब समझ में आएगी? सच्ची दिल, पासपोर्ट है तो समझ में आएगी, बाबा दिल में है तो समझ में आएगी, तो बाबा दिल में नहीं तो बाबा सब मुरली समझ में नहीं आएगी। तीसरी आंख खुलेगी नहीं, तीसरी आंख खुलेगी तब मुरली समझ में आएगी। थोड़ा भी देहभान, थोड़ा देहभिमान की मिट्टी है ना आंखों में, तो क्या होगा, मुरली दिखाई नहीं देगी, ठीक है, दिखाई देगी, ये तो स्थूल आंख है, पर तीसरी आंख बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मुरली समझ में आएगी तो ABCD समझ में आएगा, ज्ञान समझ में आया, राइट, और डी भी समझ में आ गया। अभी डी में क्या होता है, ड्रामा, कर्म सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत माना हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा। हमने किसी से 10 रुपये उधार लिया 100 साल पहले, 100 साल के बाद क्या होगा, व्यक्ति जिससे मेरा दोस्त था वापस जन्म में क्या आएगा, मेरा दोस्त बनेगा, या तो बिजनेस पार्टनर बनेगा, या तो मेरा बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, कुछ तो बनेगा, और 10 रुपये वापस करना पड़ेगा। और ब्याज कितना हो गया 10 रुपये का, 4,18,4,18,35,040 रुपये इतना देना पड़ता है इतना ब्याज हो जाता है। ये कर्म सिद्धांत है। आपने किसी के पास दो बार अपमान किया 100 साल पहले, 100 साल के बाद वो व्यक्ति आपका सास बन के आएगी, या कुछ तो संबंध संपर्क में बड़ा इंचार्ज बन के आएगी, कुछ ना कुछ तो बन के आएंगे ऑफिस में या कहीं पे भी, और आपको कितनी बार उसका वो अपमान करेंगे, सुबह दोपहर शाम जब देखो अपमान, सबका सबके अच्छे सबसे प्यार से बोलते हैं, आपका अपमान करेंगे, और आपको वहीं रहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, कम से कम 10,000 बार अपमान होगा। सुना, तो कर्मों की खेती है ना, गलत हो रहा है आपके साथ, गलत नहीं हो रहा है, जो किया था वो इसका फल मिल रहा है। ब्याज सहित, ब्याज माफ नहीं होता है, ब्याज भी माफ नहीं होता है, सुना, समझ। तो ये समझ में आने के बाद अपवित्रता क्या होती है, यही तो अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों करता है, इसे क्यों करती है, इसने तो, मैं तो इसको कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसकी रोज सेवा करता हूं तो भी मेरे को उल्टा कर रहे हैं, ये भी तो अपवित्रता है, क्या क्यों कैसे भी तो अपवित्रता है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव करना भी तो अपवित्रता है, नहीं समझ रहे। तो जब ऐसे हम करते हैं ABCD को बहुत गहराई समझते हैं ना, फुल स्टॉप लगा के, हम तो बना 100 साल का, मेरा 25 साल का हिसाब किताब है, कितने साल का है 25 साल, ना जाने कौन, अभी आपके साथ जो रहते हैं ना घर में या बाहर सेंटर पे भी रहते हैं ना, भाई बहने रहते हैं ना, वो सब ऐसे 25 साल पुराने वाले हैं, हिसाब किताब पूरा करने वाले, अगले जन्म में वो साथ में आने वाले हैं, सुना, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्या समझे। कई लोग सोचे ना अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, नहीं, वो हिसाब किताब टांग पकड़ नीचे खींच देंगे एक मिनट में, सुना, रिटर्न जर्नी है ना, तो पकड़ के नीचे ले आएंगे ना, सुना। तो ये जो है तो पवित्रता से क्या ज्ञान समझ में आए, ज्ञान से पवित्रता आएगी, तब लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाए। तब क्या हुआ, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाए। तो पहले लेवल की पवित्रता क्या है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित, आदि स्वरूप में स्थित होकर हर व्यवहार करना, यह पहले लेवल की पवित्रता। दूसरे लेवल की पवित्रता कौन सी है, अपने भी अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में मर्ज करके और सामने वाले का भी मर्ज करके व्यवहार करना। तीसरा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से मुक्त बनना। चौथा, क्या क्यों कैसे से मुक्त बनना, क्योंकि क्या क्यों कैसे आएगा, रिटर्न जर्नी है ना, कोई आपके साथ गलत करेगा, आप अच्छा करोगे तो भी गलत करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पर वैध संकल्प चला तो विचार तो चले ना, तो अपवित्रता है ना। फिर काम विकार तो छोड़ दिया, पर क्रोध भी आना भी अपवित्रता है, लोभ आना भी अपवित्रता है, मोह आना भी अहंकार आना भी अपवित्रता है, ये पांचवे लेवल की पवित्रता, ठीक है राइट। फिर छठे लेवल की अपवित्रता कौन सी है, आलस आना भी अपवित्रता है, अलबेलापन भी अपवित्रता है, दूसरों के अवगुण देखना भी अपवित्रता है, बदलने की भावना रखना भी अपवित्रता है, शक करना भी अपवित्रता है, अनुमान लगाना भी अपवित्रता है, चिंता करना भी अपवित्रता है, डरना भी अपवित्रता है, पवित्र आत्मा को डर नहीं लगता किसी से भी, जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है, कंपटीशन कंपैरिजन करना भी अपवित्रता है, ईर्ष्या द्वेष करना भी अपवित्रता है। जब ऐसी अपवित्रता खत्म होगी तब संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचारी वाली अपवित्रता पवित्रता आएगी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्मचारी माना जिसमें कुछ भी ना हो, तब संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा संबंध, तब सातवें लेवल की पवित्रता आएगी राइट। मनसा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक पवित्रता, तब सत्संग माना बाबा और मुरली अंदर रहेगी, बस सारा दिन सत्संग, बाबा दिल में और मुरली हाथ में, हाथ में माना कौन से बुद्धि रूपी हाथ में, सारा दिन ये नहीं हाथ में पकड़ के मुक्ति देखनी है, मन में चिंतन चलता रहेगा, नहीं तो ऐसे लगा कई लोग ऐसे ही चलते जाएंगे, मन में बाबा की मुरली बजती रहे और फिर मुरली बजेगी सत्संग, फिर शुद्ध सात्विक भोजन, मैं ये खा लूं आज तो, पिज्जा खाना है आज तो, ये खाना है आज तो, डोसा खाना है आज तो, क्या खाना है, तंदूरी रोटी खानी है ना, तो ये सब ये बुद्धि में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस शुद्ध सात्विक, जो मिला थोड़ा सा खाना है, नहीं खाना है थोड़ा सा खाओ बस, ठीक है राइट। तब शुद्ध सात्विक भोजन, उसके बाद क्या होगा, फिर दैवी गुणों की धारणा आएगी ना, तब आएगी, ये तो नहीं आएगी राइट। तब ये तब अमृत वेला पावरफुल होगा, तब मुरली अच्छी सारा दिन मुरली अंदर से याद हो जाएगी, एक एक लाइन बजती रहेगी अंदर, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, भाई दुनिया की बात याद नहीं आएगी, बाबा की बात याद आएगी, तब सारा दिन मुरली चलेगी, सोने के पहले सच बाबा को लव लेटर लिखेंगे, एक लव लेटर बाबा का चार पेज का आया सुबह, एक लव लेटर मैं लिखूंगा बाबा को सोने के पहले रोज, बाबा को दे के दिल से उसको दे के फिर फाड़ के डस्टबिन डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा तब होगा, तो ऐसी स्थिति तब बनेगी राइट। तो इसको बोलते हैं पवित्रता, तब ये सात, तब इसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ऐसा ब्रह्मचारी जब बनता है, ऐसी पवित्रता है वीजा, रिटर्न जर्नी की वीजा कौन सी है, ऐसी पवित्रता, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। मुश्किल लग रहा है क्या, सहज लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और टिकट कौन सी है, टिकट ऊपर जाने की टिकट भी चाहिए ना, नहीं तो पकड़ ले नीचे, बिना टिकट के तो एंटर ही नहीं करने देंगे प्लेन में, करने देंगे एंटर, नीचे रोक देंगे ना, वहीं पर चेकिंग करते हैं ना, चढ़ने नहीं देंगे, वहां सिक्योरिटी चेक में ही रख लेंगे, टिकट मिलेगी नहीं, अंदर जाने देंगे, तो कैसे होगा। तो टिकट क्या है, पास को फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप लगा के ब्रह्मचारी बन गया ना, अभी तो कोई बात ही नहीं, फुल स्टॉप एकदम एक सेकंड में लगेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा तुरंत फुल स्टॉप लगाते थे, और लगा के अपने अपने को आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड हो गए, विचार बस, अब जो भी विचार आ रहा है, जो होने वाला वही विचार आ रहा है, इसे शांति कहते हैं। और फिर आसपास जब बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहते, तो हर आत्मा का जो भी जैसा भी पार्ट निभा रही है उसको देख के हम क्या करते हैं, स्वीकार कर, दिल से स्वीकार करते हैं, मेरे गाली दे रहा है एक महिमा कर, दोनों बराबर लग रहे हैं, दोनों की बराबर पालना, इसको बोलते हैं प्यार, सच्चा स्नेह, सच्चा वो सत्यम निस्वार्थ स्नेह, ऐसा विश्व में हर आत्मा के प्रति हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं कौन सी वाली टिकट, इसको बोलते हैं, होता है ना एक चार्टर्ड प्लेन होता है ना, चार्ट एक तो होता है इकोनॉमी वाली टिकट, ये होती है चार्टर्ड प्लेन, सीधा ही जाएगा, कोई चेकिंग नहीं, एकदम सीधा जाएंगे। प्राइवेट प्राइवेट चार्टर प्लेट ना होता ना, सीधे बाबा जैसा सबके प्रति ऐसा प्यार है तो हम बाबा के सीधे पहुंच जाते हैं, तो सीधा बाबा के पास दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है। तो दूसरी गिफ्ट कब एक्टिव होती है, जब सारे विश्व की हर आत्मा के प्रति प्यार, जैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार था, ऐसा प्यार है सबके प्रति प्यार, प्यार का सागर बन जाओ, तो बाबा जैसा प्यार बन जाए प्यार के, तो बाबा का तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। तब हम सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर कौन सा है, ये सूक्ष्म शक्तियां ही सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है और सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, सारे शरीर में फैला हुआ है संस्कार। ये जो आदतें हैं ना हमारी, पवित्रता की, सत्संग की, है ना, और कौन सी, सत्संग, शुद्ध सात्विक भोजन, दैवी गुणों की धारणा और पम अमृत वेदा मुरली अटेंशन वेंटिलेशन, ये हमारी संस्कार, ये संस्कार हमारी क्या चमकीली ड्रेस बन जाती है। तो इस सूक्ष्म शरीर के साथ दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में पहुंचा देती है, तो फीलिंग आती है बाबा, बस मेरा बाबा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इसको अतिंद्रिय सुख कहते हैं, सर्व प्राप्ति में ना बाबा की गोद में समा गए, सत्य के सागर में समा गए, पवित्रता के सागर, शांति के सागर में समा गए, सच्चे सच्चे प्यार के सागर में समा गए, अतिंद्रिय सुख में समा गए। एक संबंध की अनुभूति होती, माँ के द्वारा दिव्य दिव्य ब्राह्मण जन मिला, माँ के बाप के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य बुद्धि मिली, लिफ्ट मिली, और टीचर के रूम में अब सुदर्शन चक्र घूमता, बाबा के गोद में बैठे ना अब चक्र घूम रहा है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम वाला, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयोगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, चक्र अभी बाबा के गोद में, टीचर बन के बाबा के साथ संबंध कर। फिर सतगुरु के रूप में क्या करता है बाबा, त्रिकालदर्शी बन गए तो बाबा त्रिलोकीनाथ बना देता है हमें, एक सेकंड में हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं, बाप दादा के गोद में, साकारी आकारी निराकारी, एक सेकंड में अश्वरी बन के परम धाम घर में चले जाते हैं। तीनों लोग के में आने जाने की छुट्टी है ना, वैसे 63 जन्म के पाप पर जान भसम होने के बाद ही परम धाम जा सकते, किंतु बाबा हमें सतगुरु के रूप में वरदान दे देता है, एक सेकंड में मुक्ति माना परम धाम में, एक सेकंड में जीवन मुक्ति माना सुखधाम का भी अनुभव कर सकते हैं, राइट। तो ये त्रिलोकीनाथ का वरदान। फिर बंधु के रूप में बाबा कहते सारा बोझ, बाबा कहता है जो भी तुम्हारा लौकिक अलौकिक बोझ है तो तुम मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, संबंधु माना बड़ा भाई बड़ी बहन के रूप में। सखा के रूप में बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पास जो भी कुछ है ना, तुम्हारे गलतियां हुई जाने अनजाने मेरे को बता दो, बाबा को लेटर लिखते हैं ना, यही सखा के रूप में लिखते हैं साजन के, तब बाबा साजन सखा बन गए ना, सारी गलतियां निकाल दी, अब बाबा सजनी बना लेता है हमको, तब पापा हमको सजनी बनाता है, तब देवी गुण सजाता है हमको। साजन का क्या काम होता है, सजाना, कपड़े लेके आता है, गहने लेके आता है ना, अपनी सजी के लेके आते हैं, तो बाबा हमें देवी गुण सजाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है, 16 कर साजन के रूप में ये करता है। फिर साजन के बाद क्या होता है, फैमिली बन गए ना अभी, तो बाबा की फैमिली बन गए हम, तो क्या चाहिए फिर, सज्जन चाहिए, सज्जन फिर बाबा सज्जन साथ में रहता है, पर्सनल डॉक्टर होता है ना, साथ में ही रहता है। रिटर्न जर्नी पे क्या करता है बाबा, जो जो हमारे जन्म में कोई हमारे पाप कर्म आएंगे ना, सीन सीनरी आते जाएंगे, अभी इससे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कल क्या होगा, फाइल बदलेगी, वही आत्मा जो मेरे से बहुत अच्छे से निभा रही थी, कोई बात पे प्रॉब्लम होगी उसे झगड़ा शुरू हो जाएगा। सुनने देखा होता ना, कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती चल रही होती है, बहुत अच्छा, अचानक से झगड़ा शुरू हो जाता है, उसके साथ फाइल खुल जाती है ना, रिटर्न जर्नी है ना, हिसाब किताब की फाइल शुरू हो जाती है, तो उससे हिसाब किताब शुरू हो जाता है। फिर अभी इससे ठीक ठाक था, उससे ठीक हो गया, दूसरे से खराब हो गया, रिटर्न जर्नी पे क्या हमारे सीन बदल रहे ना, क्योंकि हमारे साथ वही है जो 63 जन्म हमारे साथ रहे थे ना, वही आत्मा हमारे साथ है, सीन बदलते जा रहे हैं, जन्म बदलते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और फाइलें खुलते जा रही हैं, राइट, समझ रहे हैं। तो क्या सर्जन क्या करता है, ऑपरेशन करता जाता है, है ना। सर्जन क्या बनाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है। सर्जन क्या करता है, 16 कला संपूर्ण बनाता है, 2 कला हुए, 4 कला हुए, 6 कला, ऑपरेशन करता जाता है, ऑपरेशन करने के दिमाग निकालता जाता है और 16 कला संपूर्ण बनाता जाता है, ठीक है। संपूर्ण निर्विकारी को भी बनाता है, सर्जन ही बनाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी वही बनाता है, बार बार ध्यान जाएगा, यहां मर्यादा कम हो गई, यहां मेरा नियम कम हो गया, ध्यान जाएगा ना जाएगा, सर्जन ही बताता है, ये परहेज करो, तुमने गलती की, ये भी गलती की, तुम्हारा ये ठीक नहीं किया, है ना, सज्जन का काम है बताना, है ना। हम उसको बताते हैं बाबा ऐसा हुआ, फिर कहता है बच्चे ठीक करो, तुम्हारी गलती है, ये करता नहीं करता, सज्जन करता है। फिर क्या करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, यही सज्जन बनाता है, और फिर अहिंसा परमो धर्म भी वही बनाता है, बच्चे तुम्हारी इच्छा नहीं करो, इच्छा मात्र में विद्या बनो, बच्चे क्रोध तो छोड़ दिया, रोग डालना बंद करो, उसके अवगुण देखना बंद कर दो, लोभ शक अनुमान नहीं करो, है ना, मोह चिंता भाई नहीं करो, बाबा बताता है बच्चे तुम्हें चिंता लगी ना गलत है, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो बाबा एक चंद को क्या बनाता है? अहिंसा परमो धर्म बनाता है। जब इसे बन जाते हैं तो क्या होता है? फिर बाबा हमारा बच्चा बनता है। किसका बच्चा बनेगा? जहां जीत वहां जन्म। जब ऐसे बनते हैं तो बाबा तब उसके बच्चे बच्चा बनने के लायक बने नहीं बने, ऐसे बच्चा बन जाएंगे बिना टिकट के। तो नौवां संबंध तब होता है। इसलिए बाप से बच्चे का संबंध बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को अनुभव होता है। तो नौ संबंध, जब ऐसे नौ संबंध बन जाते हैं ना, तो इच्छाएं खत्म हो जाती है, बस पाना था सो पा लिया, अब लवलीन हो जाते हैं। लवलीन माने आनंद की स्थिति। आनंद की स्थिति क्या है? तीन तीन से दो की स्थिति है अतिंद्रिय सुख की स्थिति, दो से एक की स्थिति है आनंद की स्थिति, और एक से कम की स्थिति क्या, 0.9 क्या है, अशरीरी स्थिति। अशरीरी बन गए अभी, अशरीरी माना अशरीरी मैं 0.9 और शिव बाबा क्या है 0.000 है ना। तो अब मैं अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड होता हूँ, तो एकदम रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, एकदम रिलैक्स। ऐसे बेहोश करते ना, एनेस्थीसिया देते ना, क्या होता है, अभी बॉडी ढीली हो जाती है, ढीली रहती नहीं, देखा नहीं किसको बेहोश करते हैं, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं ना बिल्कुल, अब हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए, अब उसका ऑपरेशन करना है ना। अब उसके बाद क्या, जब से रिलैक्सेशन होता है एकदम से, तो अंदर से केमिकल एंडोर्फिन निकलते हैं, सारे पेन किलर, सारे पेन खत्म हो जाते हैं, एनकेफेलिन खुशी की फीलिंग आती है, अंदर से सीरोटोनिन निकलता है, सारे कनेक्शन ठीक हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, जैसे बच्चा पैदा होता है कितनी खुशी होती है, तो वो वाली खुशी अंदर नए जन्म की खुशी होती है, और डोपामाइन निकलता है, पूरी नर्व्स पूरी कनेक्ट हो जाती है बॉडी में, मैं हम आत्मा ऊपर है पर बॉडी में कनेक्शन हो रही है। तो बेहोश हो गए, अभी अशरीरी बन गए, तो क्या होता है, अब इतनी ही अंदर से स्थिति आती है, तो देह के कर्म भोग है ना, देह के हिसाब किताब है, कर्मों के हिसाब किताब है, उसको सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है, अब फील नहीं हो रही, दर्द खत्म हो गई, कर्मों के हिसाब किताब समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति, सेवा करने की शक्ति आ गई, अब मैंपन मेरापन खत्म हो जाता है। इससे जैसे बेहोश करने के बाद मैंपन मेरापन रहता है, मेरे हाथ क्यों काट रहे हो, मेरे छाती पे क्यों ऐसे लगा रहे हो, करते हैं कुछ, कहते हैं क्या, बोलते हैं क्या, बेहोश आदमी बोलता है क्या। अब ऑपरेशन क्या है, जड़ क्या है, जड़ है हमारे पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, राइट। दे के कर्म भोग क्यों आए, जड़ क्या है, पांच विकार, कर्म इस कर्मों के हिसाब किताब के जड़। अब जब मैंपन मेरापन, तो निराकारी स्थिति आ जाती है, मैंपन मेरेपन, मतलब मैंपन के त्याग की तपस्या, मेपन मेरेपन के त्याग की, त्याग को ही तपस्या कहते हैं। तो निर्विकार स्थिति आती है, निर्विकार स्थिति में रहकर जब हम, जब हमारे पांचों विकार भस्म होने लगते हैं ना, उसमें रहकर जो सेवा होती है ना, उसके द्वारा दुआएं मिलती हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर क्या रिकॉर्डिंग हो, तब रिकॉर्डिंग, निर्विकार स्थिति में रिकॉर्डिंग होती है। हम जिसकी सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मनसा वाचा करवाना, अपने आप ही सेवा होती रहती है, और रिकॉर्डिंग इसमें होती है, ज्ञान रिकॉर्ड होता है, पवित्रता शांति प्रेम सुखान रिकॉर्ड होता है, उसी से हमारे अंदर स्थिति अंदर बनती जाती है। तो हमारे पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, रिटर्न जर्नी अशरीरी निराकारी, और उससे बीज रूप, मास्टर बीज रूप बनते जाते, और सारे विश्व की सेवा होती जाती, ऐसे विकार भस्म होते होते हम क्या होते जाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण प्रैक्टिकल में बनते जाते, मनमाना भव हो जाते, और विकार हमारे खत्म होते जाते, हम एकदम 63 जन्म के पाप कर्म भस्म हुए, सत्य के वहां आ गए, अभी हमारी एकदम चित्त अचल अडोल स्थिर हो जाता है, एक स्थिति हो जाती है, सत्य की सीन सिंधी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। 21 जन्म पे पहुंच गए ना, अब मन ट्रांसपेरेंट हो गया ना, नहीं हो गया, मन ट्रांसपेरेंट हो गया, अब त्रेता के जन्म भी बीत गए, सत्युग का पहला जन्म आ गया, अब पूरे से हम विनाश में विनाश हो रहा होगा, हम यहाँ बैठे बैठे भी सत्युग के सीन सिंधी देख रहे होंगे, यहाँ हाहाकार हो रही होगी, हम क्या होंगे, वो कहेंगे, वो दुनिया वाले बोले हाँ ही मरा, हम क्या कहेंगे, वाह वाह मैं तो अपने महल में गया, सत्युग में गया, हमें खुशी के बाजे बज रहे होंगे, उनके क्या होगा, उनके विनाश के, ऐसे हमारा ये रिटर्न जर्नी है। तो बाबा के साथ हम ऐसी स्थिति में क्या करके जाएंगे, समान और संपन्न बन के जाएंगे, रिटर्न माना टर्न करके, रिटर्न जर्नी में बाबा के साथ एक एक संबंध की अनुभूति करते हुए, राइट। माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु माना बोझ देना, सखा माना सारी बातें बता देना, साजन, जब पांच संबंध का अनुभव तो छठा संबंध अनुभव होगा, सातवां कौन सा, सज्जन नहीं, सात आठवां सज्जन, नौवां बच्चा, ठीक है, तो इसमें सारे काम पूरे हो जाएंगे आपके, ओके। ओम रिटर्न जर्नी हो गई, रिटर्न जर्नी पूरी बाबा के साथ, हम फिर साथी बन के मास्टर बीज रूप बन के, बीज रूप आपसे कंबाइंड होकर वापस जाएंगे बाबा के पास, और बाबा के साथ फिर सत्युग में आएंगे। तो पास है पास रहेंगे, साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ में जाएंगे और साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में आएंगे। ब्रह्मा बाबा के पास ही आएंगे कि दूर आएंगे? ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो पास फैमिली में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ओम।
बहुत बहुत थैंक्स, इतना सुंदर गहरा ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र खुल गया ना। बहुत गहरी गहरी बातें बताई, मुझे भी कुछ बातें इसमें से पता नहीं थी, लेकिन ज्ञान मिलने से हमारे अंदर जागृति आ जाती है और हम उस काम को मतलब सावधानी पूर्वक करते हैं। तो समझ में आया कि जो कुछ भी है वो सब हमारे पाप कर्मों का ही परिणाम है, और पाप कर्मों को हमें कैसे समाप्त करना है वो भी बताया, साफ दिल, सच्चे दिल और प्यूरिटी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो बहुत सुंदर गहरे अनुभवों का क्लास था, बहुत ही सुंदर मनन चिंतन था, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।